SBS हिंदी के सभी सुनने वालों को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। भारत के जन जन की प्रिय गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रहीं। स्वर कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कही जाने वाली लता जी ने रविवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 92 वर्ष की थीं। उनके देहावसान की खबर सुन पूरा देश स्तब्ध रह गया। यह एक ऐसा मौका था जब चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी नेताओं ने एक स्वर में उन्हें याद किया और अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। भारत की तरह ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के असंख्य लोगों ने भी उन्हें उसी शिद्दत से याद किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षा और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के अलावा कई देशों के राजनयिकों ने उन्हें सोशल मीडिया पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। रविवार शाम को उनका अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जहां उन्हें हजारों लोगों ने भीगी आंखों से अंतिम विदाई दी। उन्हें याद करते हुए उस्ताद राशिद खान साहब कहते हैं,
की और तकलीफ की बात है कि लता दीदी जैसी आर्टिस्ट हमारे बीच नहीं है आज, और हम लोग के हिंदुस्तान की शान थी वो। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी कलाकार, और ऐसे कलाकार और पैदा नहीं होंगे इस युग में जो दीदी जैसी। और बड़ा प्यार था हमारे साथ, बहुत प्यार करती थी। अचानक आज ये सुन के हमें सारे देश को धक्का लगा। गोवा में लास्ट 2014 में मेरा कॉन्सर्ट सुनने सामने बैठी हुई, 1.5-2 घंटा मैं गा रहा और सुन के बड़ी खुश हुई। बाद में मेरे से मिलने के लिए आई, मुझे ही बोलने लगी, अरे क्या आवाज़ दी खासा बाप को अल्लाह ताला ने। तो मैंने कहा कौन किसको बोल रहा है, ये मुझे आज भी याद है। लेकिन उस जैसी कलाकार, ऐसी सुरों की मलका बोला जाता था उनको, ऐसे कलाकार आज कहाँ पैदा होंगे, नहीं हो सकते। लता दीदी थी, उनका कोई जोड़ देंगे।
लगभग 8 दशक लंबे फिल्मी दुनिया के सफ़र के दौरान लता जी ने 30,000 से ज़्यादा गाने भारत की सभी प्रांतीय भाषाओं में गाए। लता जी के साथ कई बेहतरीन गाने संगीतबद्ध करने वाले ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित संगीतकार A.R. रहमान ने स्वर की मलिका को श्रद्धांजलि देते हुए कहा,
It's a very, very sad day for all of us. When people live, we take it for granted. And somebody like Lata ji is not just a singer, not just an icon. I think part of a soul, part of a consciousness of India, Indianness, Hindustani music, Urdu poetry, Hindi poetry, Bengali, and so many other languages she sang. And this void is going to remain forever for all of us. And in my experience with her, it goes back to my dad, who I believe he passed away when I was very young. I had a picture of her near his bed, so he would wake up and get inspired to go to the recordings. So it starts there. Coming to me, I was so lucky to record a few songs with her, sing along with her, be a part of a show where I learned probably one of the most important things about performing on stage. I think about it, it's like a huge void is going to happen.
हम सब की अपनी लता दीदी को SBS परिवार की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के बाद आइए सुनते हैं कुछ अन्य समाचार। पंजाब की गर्माती चुनावी राजनीति के बीच कांग्रेस पार्टी ने रविवार को वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अपना अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने टेलीफोन द्वारा की गई रायशुमारी के नतीजे बताते हुए लुधियाना में श्री चन्नी के नाम की घोषणा की।
पंजाब के लोगों ने कहा, हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी।
मुकाबला तीन उम्मीदवारों श्री नवजोत सिंह सिद्धू, श्री चरणजीत सिंह चन्नी और श्री सुनील कुमार जाखड़ के बीच था। श्री चन्नी के चयन पर आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा ने तंज करते हुए कांग्रेस की आलोचना की।
पंजाब का मूड बड़ा क्लियर है। पंजाब ने अरविंद केजरीवाल जी को, भगवंत मान साहब को एक मौका देने का मन बना लिया है, झाड़ू का बटन दबाने का मन बना लिया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस जिस मर्जी को अपना सीएम उम्मीदवार ऐलान करे। लेकिन दुख इस बात का है कि एक ऐसे शख्स को कांग्रेस पार्टी ने अपना सीएम उम्मीदवार बनाया है जिसपे रेता चोरी, इलीगल सैंड माइनिंग, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग माफिया चलाने के आरोप लगे। 111 दिन भी चन्नी साहब जब वो सीएम बने, 111 दिन का उनका कार्यकाल था, 111 दिन भी वो विदाउट करप्शन नहीं रह सके। उन्हें करप्शन करनी ही थी और कांग्रेस ने उसी शख्स को अपना सीएम का उम्मीदवार बना दिया।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में श्री चन्नी के भतीजे श्री भूपिंदर सिंह हनी को रेत खनन के कथित मामले में गिरफ्तार किया है। हालांकि श्री चन्नी ने इस मामले को चुनावी राजनीति से प्रेरित बताया है और साथ ही ये भी कहा है कि कानून अपना काम करेगा, जिससे उन्हें कोई एतराज नहीं। लेकिन यह मामला उनके लिए चुनावी सिरदर्द बनने के आसार हैं, क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियां इसे बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में हैं। 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दल अपना दमखम लगा रहे हैं। कृषि कानूनों से उपजे गुस्से ने इस बार जाट समुदाय के एक बड़े हिस्से को भाजपा के खिलाफ कर दिया है, जिसे वापस पाने के लिए भाजपा के नेताओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बागपत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को समाजवादी पार्टी के शासन के प्रति आगाह करते हुए प्रचार किया।
ये चुनाव निश्चित करने वाला है कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार यहाँ माफियाओं का राज चलेगा या कानून का राज चलेगा। ये चुनाव सुनिश्चित करने वाला है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश फिर से एक बार दंगों की आग में झुलसेगा, यहाँ विकास का रास्ता प्रशस्त होगा, वो निश्चित करने का चुनाव है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को मथुरा, बुलंदशहर और आगरा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जन चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर तीखे प्रहार किए। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की बौखलाहट की वजह राष्ट्रीय लोक दल का समाजवादी पार्टी के साथ आना बताया।
ये जो हवा चल रही है, ये जो जनता का सैलाब चल रहा है, इसी से भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है और उनकी भाषा बदल गई है। और सोचो क्या भाषा बदली है, हमें जो कुछ कह रहे हैं वो तो पहले से कहते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नया कुछ नहीं कह रहे, हमें जो कहते थे वो पहले से कहते आ रहे हैं। अब हमसे ज्यादा तकलीफ जैन चौधरी से है, हमसे जो परेशानी रही होगी वो तो है उनको, लेकिन जब से जैन चौधरी साथ आए हैं उनकी तकलीफें बढ़ गई हैं, परेशानी बढ़ गई हैं। वो कहते हैं कि अभी तो साथ दिखाई दे रहे हैं लेकिन बाद में साथ नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, समाजवादी लोग एक बार साथ ले लेते हैं फिर किसी का साथ नहीं छोड़ते।
और अंत में खेल जगत के समाचार। भारत ने अंडर 19 क्रिकेट में अपना दबदबा कायम रखते हुए इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप को 5वीं बार अपने कब्जे में कर लिया है। वेस्ट इंडीज के एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स ग्राउंड्स में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम ने 190 रनों का लक्ष्य आसानी से 14 गेंदें शेष रहते प्राप्त कर लिया। मैन ऑफ द मैच हरफन मौला राज बाबा को मिला। उन्होंने न केवल 5 विकेट झटके बल्कि बल्लेबाजी में 35 रनों का योगदान भी दिया। अहमदाबाद में अपना 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हुए भारत ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराकर शानदार तरीके से जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की पूरी टीम मात्र 43.5 ओवर में 176 रन बनाकर आउट हो गई। केवल जेसन होल्डर ही भारत की घातक स्पिन गेंदबाजी का मुकाबला कर पाए। उन्होंने 71 गेंदों पर 57 रन बनाए। भारत की ओर से यजुवेंद्र चहल ने 49 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने मात्र 30 रन देकर 3 विकेट झटके। जवाब में भारतीय टीम ने मात्र 28 ओवर में केवल 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 51 गेंदों पर 60 रनों का और सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों पर 34 रनों का योगदान दिया। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।